मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 17 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही अपने दो मित्रों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में दाखिला लिया है। इन मित्रों के नाम हैं जितेंद्र रामलाल रोकड़े, आपका गांव है शहादा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र से, और दूसरे मित्र हैं श्यामा सालोटा मध्य प्रदेश से। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, आप सबसे मुझे कुछ बातें करनी है और वो बातें अलग अलग तरह की हैं। पहले तो यह है कि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है दोस्तों कि जनवरी महीने का जो करेंट अफेयर है वो करेंट अफेयर्स डाल दिया गया है, यानी कि जो आपका स्टोर है जहां पहुंच करके आप ऑनलाइन लेक्चर्स सुनते हैं वहां इसे उपलब्ध करा दिया गया है, जनवरी महीने का करेंट अफेयर्स, तो आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैं विशेष रूप से सजेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से सुनेंगे, और यदि ऑनलाइन के किसी स्टूडेंट को अभी इंटरव्यू में जाने का अवसर मिला हो तो उनके लिए विशेष हिदायत है कि वे इस करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से सुने, और उसमें कुछ ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर वे विचार भी करें। तो दोस्तों, कल से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, तो मैं उन सभी नौजवान साथियों को जो इंटरव्यू में जाने वाले हैं कल से लेकर के और अंतिम तिथि तक, उन सभी को एकेडमी के अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें आत्मविश्वास, आत्मशक्ति प्रदान करे ताकि वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब थोड़ी सी बात मैं ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, अब एक महीने का भी वक्त नहीं बचा है जब आप एक तरफ होंगे और हमारी एकेडमी की टीम दूसरी तरफ होगी, और डेफिनेटली एकेडमी की टीम में मैं दूसरी तरफ होऊंगा, और हम सब आमने सामने बैठकर लगातार 15 दिनों तक 90 घंटे से भी अधिक केवल इस इश्यू पर बात करेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि अब जैसे जैसे यहां आने के दिन नजदीक आते जाएंगे आपके का जो मानसिक परिवेश है वो काफी कुछ बदलने लगेगा। आपके मन में अलग अलग तरह की आशंकाएं पैदा होने लगेंगी। कुछ लोग ये सोचने लगेंगे कि हमने यार बेकार में ही एडमिशन ले लिया, क्या फायदा था। कुछ लोग सोचेंगे कि यार चलो देखते हैं जाना है या नहीं जाना है। कुछ लोग सोचेंगे कि पता नहीं वहां जाने के बाद क्या होगा। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि एडमिशन लिया तो सही लिया या गलत लिया। इस तरह की ढेर सारी बातें आपके दिमाग में उठ रही होंगी। ये मानव स्वभाव है, ऐसा होता ही है। जब भी हम अपने स्थिति, यानी कि कह लीजिए जिसे हम अपना कंफर्टेबल जोन बना लेते हैं, जब उससे बाहर निकलने की स्थिति आती है तो मन में इस तरह के आशंकाएं, इस तरह के सवाल उठते ही उठते हैं। दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं, याद रखिए कि ये पढ़ाने वाली क्लासेस नहीं है, ये समझाने वाली क्लासेस हैं, और इसे आप केवल तभी समझ सकेंगे जब आप यहां आएंगे। एकेडमी की ओर से मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आप अपने दिमाग की आशंकाओं को हटा दें, अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं, और इस विश्वास को लेकर यहां आएं कि वहां आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं। अंडरलाइन कर लें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए, जहां आप इस बात की छोटी छोटी बारीकियों को भी समझेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो अलग अलग विषय हैं उन विषयों को कैसे पढ़ा जाना चाहिए ताकि उस पर आपकी जबरदस्त रूप से कमांड बन सके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, और साथ ही साथ लिखने का तरीका क्या होता है, और इनमें से बहुत सी बातें हम केवल प्रैक्टिकल के रूप में यहां करने और समझाने की कोशिश करेंगे। आपको मजा आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। इसलिए आप अपने दिमाग से आशंकाओं को हटा दें, आत्मविश्वास लाएं, और उत्साह के साथ 15 मार्च की तिथि की प्रतीक्षा करें। उत्साह के साथ, जैसे कि कुछ बहुत बेहतर होने जा रहा है, तभी आपके हाथ का कटोरा बड़ा बन सकेगा। आपके दिमाग में जो दामन फैला हुआ है, बड़ा बन सकेगा, यूं कह लीजिए कि दिमाग में जो थैला लटक रहा है वो बड़ा बन सकेगा, और आपके हाथ का कटोरा और दिमाग का दामन जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आप सब यहां से लेकर जा सकेंगे। तो दोस्तों, अपने दिमाग को अभी से ही मजबूत बनाना शुरू कर दें। डेली ऑडियो लेक्चर आप डेली सुने, क्योंकि जो मेरी ओर से इंस्ट्रक्शन होंगे तो बहुत से इंस्ट्रक्शन जो इससे रिलेटेड हैं मैं डेली ऑडियो लेक्चर में ही आप लोगों को दिया करूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के बारे में। आज के मुख्य विषय के तहत मैं प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है दोस्तों, उसका क्या फॉर्मेट होता है, किस किस सेक्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। लेकिन पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और इनफैक्ट सच पूछिए तो ऐसी कोई खबर है नहीं। इसे एक दिन पहले की खबर है टर्की को लेकर के, कि वो टर्की के जो हेड हैं उन्होंने एक बात कह दी कि जो कश्मीर है वो कश्मीर पर उन्होंने भारत के कदम को गलत बताया, अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर के पाकिस्तान का सपोर्ट किया और इसका भारत ने बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया है। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि टर्की हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि अनुच्छेद 370 को लेकर के बात हुई है तो बस आपके दिमाग में छोटा सा तथ्य दर्ज होना चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। विदेश मंत्रालय क्या होता है, देखिए कि जब कोई भी इस तरह की इंपॉर्टेंट विजिट होती है, सामान्यतः तो वो सभी विजिट के बारे में करता है, चाहे हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हों, उपराष्ट्रपति बाहर जा रहे हों, या बाहर की कोई पर्सनालिटी इस तरह की हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहां आ रहे हों, तो एक सिस्टम होता है कर्टन रेजर का, यानी कि पर्दा उठ रहा है, कर्टन रेजर। तो उसमें क्या होता है, उन देशों के साथ में हमारे जो संबंध हैं, जो जिन चीजों पर बातचीत होने की संभावनाएं हैं, जिन चीजों को लेकर के विवाद चल रहे हैं, या थोड़ी सी हमारे संबंधों की जो बैकग्राउंड है उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आगमन से पहले इस तरह की जानकारी देना मंत्रालय ने शुरू कर दिया है, और अखबारों में आपको पढ़ने को भी इसके बारे में थोड़े बहुत मिलने लगे हैं। तो इससे पहले कि उनकी यात्रा यहां शुरू हो और इसके बाद खत्म हो जाए, तो वहां उस समय आपको जो पढ़ने को मिलेंगे वो मिलेंगे कि क्या क्या हुआ इस यात्रा में, क्या क्या हुआ। लेकिन जो बैकग्राउंड है वह आपको पढ़ने को उस समय नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है। तो बस मैं आपको यहां सतर्क कर रहा हूं कि जब भी अखबारों में भारत और अमेरिका के संबंधों पर कुछ भी पढ़ने को मिले तो आप उसे इग्नोर न कर दें, थोड़ा सा ही सही एक नजर मार लें। तो इससे आपके दिमाग का कैनवास तैयार हो जाएगा और आप पाएंगे कि जैसे ही ट्रंप जी यहां आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं के साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तब जो बातें होंगी, जिन संधियों पर हस्ताक्षर होंगे, जिन मुद्दों पर बात नहीं बन पाएगी, उन सब की समझ जो आपको होगी वो लाजवाब होगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने मस्तिष्क की भूमिका तैयार करनी पड़ेगी जो इस तरीके से हो सकती है। मित्रों, अब आइए मैं मुख्य विषय पर कुछ बातें करूं। मुख्य विषय में मैं आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें इसके लिए एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूं। फॉर्मेट इस रूप में कि देखिए, बहुत ज्यादा सिलेबस है और नहीं भी है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को यूपीएससी के लिखे हुए के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे तो आप बुरी तरह से फेल हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है, इनफैक्ट वो केवल सांकेतिक सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। तब आप क्या करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स तो नहीं कहना चाहिए, सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप अगर आप एग्जामिनेशन में उन सब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उनका जो वेटेज है वो समान नहीं है, बराबर नहीं है, वो अलग अलग है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि प्री एग्जामिनेशन में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं कह रहा हूं कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एग्जैक्ट नंबर बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके आधार पर हम काफी कुछ अनुमान लगा लेते हैं कि इतने इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उन अनुमानों के आधार पर फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा, हमें इस सब्जेक्ट को इतनी तरजीह देनी है। वहां आप सभी सब्जेक्ट को अगर समान मान करके और उस पर समान दबाव डालेंगे, समान तरीके से तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक सही रणनीति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। बेहतर होगा कि आप उन पर ज्यादा काम करें, उन पर ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा समय लगाएं, जिनसे प्रश्न सब ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। दोस्तों, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि आप देखिए कि जो प्री एग्जामिनेशन है और जो मेन एग्जामिनेशन है, हालांकि पैटर्न जनरल स्टडीज का अलग अलग है, लेकिन सिलेबस बहुत अलग अलग नहीं है। मैं एक कह रहा हूं, सिलेबस बहुत अलग अलग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम है, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके प्री में नहीं है। इसके बावजूद दोनों में बहुत ज्यादा समानता है। यह स्पेशली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वे टॉपिक जो प्री में है और मेंस में भी है, तो मेंस में थोड़ी सी डिटेल में बात की गई है। जैसे अर्थशास्त्र को ले लीजिए तो प्री में बहुत थोड़ा सा उल्लेख है, लेकिन मेंस में बहुत डिटेल में है। पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए तो प्री में बहुत थोड़ा सा उल्लेख है, नहीं के बराबर ही कह लीजिए, लेकिन मेंस में उसकी डिटेल दी गई है। तो अगर मेंस में किसी भी टॉपिक के डिटेल्स हैं जो प्री में भी हैं, तो मान करके चलिए कि जो मेंस का सिलेबस है वही आपके प्री का सिलेबस है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी आपको मेंस भी तो क्वालिफाई करना है कि या नहीं करना है। अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो सीधी सी बात है कि आप मेंस की तैयारी कीजिए, प्री की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो दोस्तों, इन बातों का आपको प्री के प्रिपरेशन के लिए खास रूप से ध्यान रखना है। अब मैं आपको मोटे तौर पर यह बता रहा हूं कि किन किन सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज प्री में है। चार पिलर्स होते हैं जिन्हें मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फोर पिलर्स कहता हूं, और ये फोर पिलर्स आप जानते भी हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो मैं पॉलिटिकल साइंस कह रहा हूं इसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में कल्चर शामिल, आर्ट और कल्चर हिस्ट्री में ही शामिल हो जाते हैं। ये चार सब्जेक्ट हैं। अगर आप पिछले पांच सालों के क्वेश्चन पेपर उठा लें, मैं प्रीवियस की बात करें, प्री एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको जानकर यह सुखद आश्चर्य होगा कि इन चार सब्जेक्ट से जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी जो रेंज है वह है 62% से लेकर 74% तक, 62% से लेकर के 74% तक। कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है कि अगर इन चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को मिला दिया जाए तो 62% से कम क्वेश्चन पूछे गए हों, 74% से अधिक भी नहीं पूछे गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चारों सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है, और ये चारों सब्जेक्ट मेंस में बहुत प्रोमिनेंटली हैं, इनकी आप उपेक्षा कर ही नहीं सकते। तो सीधी सी बात है कि इन चारों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जिस पर मैं खासकर जोर देना चाहूंगा फ्रेंड्स, वह है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, अगर हम पिछले कुछ सालों के, वही चार पांच सालों के पेपर को देखें, तो एनवायरमेंट पर हमेशा लगभग 9-10 क्वेश्चन आते हैं। एक साल 2016 का जरूर ऐसा रहा है जिसमें कि क्वेश्चंस की संख्या काफी कम रही है, लेकिन हम उसे अपवाद स्वरूप मानते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं तो उनका भी प्री यही एग्जामिनेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए अब एनवायरमेंट पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी भी ठीक ठाक संख्या है, 6-7 क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं, कभी कभी 8-10 तक हो गए हैं, लेकिन हम 5-7 के बीच में मानकर चलते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंट से होते हैं, तो एक अच्छी बात है, अदरवाइज साइंस की तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये भी आपके काफी पक्ष में है। जहां तक करेंट अफेयर्स का सवाल है फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स तो देखिए थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए कि विवादास्पद इस मायने में हो जाता है कि जो मैंने अभी ऊपर चार सब्जेक्ट की बात कही है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अब करंट अफेयर्स में भी वो आ जाते हैं और सब्जेक्ट में भी आ जाते हैं, तो उसे आप सब्जेक्ट में भी गिन सकते हैं और करंट अफेयर्स में भी गिन सकते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स की प्रश्नों की संख्या कितनी है मुझे लगता है कि इसके बारे में बताने और कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिना करंट अफेयर्स के गुजारा नहीं है, इतना ही कहना मुझे लगता है कि अपने आप में पर्याप्त होगा। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में दी है। लगातार हम लोग प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात करते रहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी काफी पहले आपसे कहा है कि सोमवार को ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में आप सबसे बातें करूं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन मित्रों में से कुछ के नाम है, और आज तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि काफी नाम है, मतलब मुझे काफी अच्छे, प्यारे, सुंदर, खूबसूरत मेल पढ़ने को मिले हैं, तो इसीलिए नाम भी ज्यादा हो गए हैं, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। कुछ दोस्तों के नाम हैं अनूप राज, प्रणव सिंह, गौरव तोमर, विजय कुमार लेहरग्गा पंजाब से, अभिषेक कुमार सिंह लखनऊ, नितिन कुमार, शिवांगी पवार उत्तराखंड से, सुनील कुमार, सुयश तिर्की, पल्लव त्यागी, हिमांशु सिंह अमेठी उत्तर प्रदेश से, राहुल सिंह, करण चौहान हरियाणा से, अजीत सिंह अलवर राजस्थान से, सुशील बड़ियासर अजमेर राजस्थान से, और अमरीन पटेल खान, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करके इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।